जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन स्टूडियो से ये प्रोग्राम है जहाँ रंग में हूँ आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। ये प्रोग्राम सैटेलाइट एशिया सेट 3 हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com और रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलो हर्ट्ज़ पर लाइव पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-777-8-9। और सामीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ होगा इतवार की सुबह इराक के दारुलहुकूमत बगदाद में होने वाले दहशतगर्द हमलों से, जिसमें हलाकतों की तादाद 150 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 225 अफराद शदीद ज़ख्मी बताई जा रहे हैं। इराक में 3 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया गया है और इन हमलों की जिम्मेदारी दाइश कबूल कर चुकी है। प्रोग्राम के इसी हिस्से में सऊदी अरब में अमरीकी कौंसल खाने के करीब खुदकुश बम धमाके पर भी बात होगी। आगे चलकर सैनिटर जॉन मैकेन की सरबराही में अमरीकी डेलीगेशन का पाकिस्तान का दौरा करने के बाद अफगानिस्तान के दौरे पर बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में स्विस अकाउंट से मुतल्लिक स्विस नेशनल बैंक की जानिब से जारी करदा उस हालिया रिपोर्ट का जायजा लेंगे, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 1.5 बिलियन डॉलर्स के साथ 69th नंबर पर, जबकि भारत 1.2 बिलियन के साथ 75th नंबर पर आ गया है। गुज़श्ता साल सामीन भारत का जो नंबर था वो 61 था, जिसका मतलब है कि स्विस जो अकाउंट्स है उसमें भारत की जो पैसे हैं उसमें कमी वाकई हो रही है। इसके अलावा बरतानिया का नंबर पहला बताया जा रहा है और अमरीका का नंबर दूसरे नंबर पर है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से होने वाले नुकसानात और यहाँ अमेरिका में 240वीं योमी आज़ादी के जश्न पर भी बात होगी। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है लंदन से इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट मंजर वसीम साहब ने, और हमारे साथ है बफलो यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के आप एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब भी हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। और मंजर वसीम साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। बगदाद में कल एक साथ दो खुदकुश धमाके हुए हैं जिनमें 150 से ज़्यादा अफराद बताया जा रहा है कि हलाक हुए हैं। इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर तादाद बच्चों की है जो वहाँ पर ईद शॉपिंग के लिए वहाँ पर मौजूद थे। 200 से ज़्यादा अफराद बताया जा रहा है कि इन हमलों में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। सवाल यह है कि आप इसको हम क्या कहें, आप किस तरह इन धमाकों को देखते हैं, इसको दाइश की स्ट्रेंथ हम समझ लें या फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन?
ज़्यादा ये इसकी फ्रस्ट्रेशन लग रही है या फिर एक, क्योंकि जिस तरीके से रीसेंट उनको डिफीट हो रही हैं डिफरेंट इलाकों में, तो दाइश के पास ये प्रूव करना ज़रूरी हो गया ताकि वो रिटेलिएट कर सकते हैं। इस तरह की कोई रिटेलिएशन जो थी वो बहुत क्लियरली एक्सपेक्टेड थी, और अगर हम जिस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ के इराक में हमला किया बल्कि और मुल्कों को भी उन्होंने निशाना बनाया, और ये जाहिर यही करता है कि दाइश जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं और उसके ऊपर वो प्रूव करना चाह रहे हैं दुनिया को कि उनके पास अभी भी रिटेलिएट करने के ऑप्शन हैं काफी।
जी प्रोफेसर फैजान, आप हमें बताइएगा, अमरीकी ओहदेदारों को अगर हम देखें तो वो ये दावा करते आ रहे हैं कि दाइश जो है उसको कंटेन किया जा रहा है, उसको काफ़ी हद तक पिसपा किया जा चुका है। फलूजा की मिसाल भी दी जाती है जो गुज़श्ता दिनों जिसको इराकी फोर्सेस ने दाइश से आज़ाद कराया, लेकिन इमदाद भी काफ़ी इराक को मिल रही है, उसके बावजूद ऐसे वाकयात का रूनुमा होना, और किस तरह आप इसको देखते हैं?
जी, सबसे पहले सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। असल में जैसे मंदर साहब ने फरमाया, ये सही है कि दाइश की जो कुव्वत पहले थी वो नहीं रही, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे उन्होंने बाकायदा अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी थी और एक ऐसा इलाका उनके कब्जे में